एक बौद्ध बौद्ध भिक्षु ने अपनी आत्म कहानी लिखी है। उस सन्यासी ने अपने कुछ बचपन के संस्मरण अपनी जीवन कहानी में लिखे। उसने लिखा है कि जब मैं 7 वर्ष का था, जब मैं 7 वर्ष का था, तब मुझे शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। दूसरे दिन सुबह मुझे सुबह सुबह निकलना था और घर का ऐसा नियम था, वो संन्यास दीक्षा के लिए भी जा रहा था गुरुकुल में, कि जब घर से आज तक जितने बच्चे निकले या निकलते समय पीछे मुड़ के ना देखे, कोई याद ना आए, न माँ न बाप न भाई न बहन। और रात को उसे बताया गया कि कल तुम्हें सुबह सुबह हमेशा के लिए यहां से चले जाना है, और यही हमारे घर का कुल का नियम है कि जब तुम यहां से जाओगे तो पीछे मुड़ के ना देखना। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा भी, एक बार भी यदि तुम्हें हम में से किसी की भी याद आ गई, तो हमारे कुल का नाम कलंकित हो जाएगा, क्योंकि सदियों से यह रीति परंपरा है, जो इस मार्ग पर निकल जाता है उसे पीछे मुड़कर देखना नहीं है। वो छोटा सा बच्चा, वो भिक्षु लिखता है कि मेरा बाल मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, एक तो मैं जा रहा हूं और हमेशा के लिए जा रहा हूं, और पिताजी कह रहे हैं कि पीछे मुड़कर ना देखना है, ये कैसे हो सकता है। जिस माँ के साथ वो रहा, उस माँ का प्यार, वो भाई बहन, उसके तो आंसू नहीं रुक रहे थे, अब से ही रोना चालू था, सोच रहा था कैसे निर्दयी लोग है ये। परंतु उसे बार बार समझाया गया कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं है, अगर तुमने देखा तो फेल, फिर तुम्हारी कोई शिक्षा नहीं होगी, हम भी तुम्हें नहीं रखेंगे। वो बच्चा रात भर रोता है, सुबह सुबह 4 बजे बैलगाड़ी आती है उसे लेने। वो बैठता है, 2 शर्त रहती है, एक तो रोना भी नहीं है, दूसरा पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। वो बच्चा बैठता है संकल्प के साथ कि नहीं रोऊंगा और देखूंगा भी नहीं पीछे, ऐसे कृत संकल्प दृढ़ संकल्प होकर बैठता है। हजारों बार मन कहता है पीछे मुड़कर देखूं, मां खड़ी है, भाई खड़ा है, बहन खड़ी है, फिर कभी देख नहीं पाऊंगा इनको, एक बार देख लूं, रोने का दिल हो रहा है, परंतु वचन याद है पिता के कि पीछे मुड़कर तुम्हें देखना नहीं है। क्या समझता होगा वो छोटा सा बालक, क्या उसने दुनिया को देखा था, कुछ नहीं, फिर भी आदेश था, बैठ गया और चल पड़ा, नहीं देखा पीछे और ना ही आंसू की एक बूंद गिरी नीचे। पहुंचा गुरुकुल, गुरुकुल के द्वार पर ही आचार्य ने उसे रोक दिया, कहा कि इस गुरुकुल का एक नियम है, और आज तक तुम जिस परिवार से आए हो उस हर बच्चे ने इस नियम का पालन किया है और उसमें उत्तीर्ण भी हुआ है, और तुमसे ही भी यही आशा की जाती है। उससे कहा गया अपनी आंखें बंद कर दो और इस द्वार पर खड़े हो जाओ, जब तक तुम्हें न कहा जाए कि आंखें खोलो, आंखें नहीं खोलना। अगर तुमने आंखें खोली तो फेल, वापस तुम्हें चला जाना पड़ेगा यहां से, फिर तुम्हारे लिए इस गुरुकुल में कोई प्रवेश नहीं। बच्चा फिर सोचने लगा कैसे निर्दयी लोग हैं। वह आंखें बंद करके खड़ा रहा। सुबह का समय था, गुरुकुल शुरू हुआ, दूसरे बच्चे आने लगे, कोई उसे छेड़ने लगा, कोई उसके बाल खींचने लगे, कोई उसे पत्थर मारने लगा, परंतु वो आंखें मूंदे हुए, आंखें खोलना नहीं है। आंखें अगर खोली तो वापस घर जाना पड़ेगा, कुल कलंकित करोगे। तुम्हारे घर से आज तक जितने आए हैं किसी ने भी ऐसा नहीं किया। छोटा बच्चा, 7 साल मात्र, भूखा प्यासा, किसी ने पूछा तक नहीं पानी के लिए। 8 बजे, 10 बज गए, दोपहर हो गई, सूरज आसमान में, पसीना आने लगा, आंखें बंद, दूसरे बच्चे छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके साथ, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई उसका जो थैला है वो खींच रहा है, कोई उसका हाथ खींच रहा है, कोई टांग खींच रहा है, परंतु उसने आंख नहीं खोली। शाम हो गई परंतु कोई आया नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि आंख खोलो। जब रात्रि होने आई तो आचार्य आए और कहा कि आप आंख खोलो अब, और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। वो बहुत ही भिक्षु अपनी आत्म कहानी में लिखता है, तब तो मुझे लगा था कि कितने निर्दयी थे वो लोग, वो घर जिसने मुझे इस तरह भेज दिया, और वो गुरुकुल और उसके आचार्य, परंतु आज उनके लिए मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है, प्रेम से भर गया है। ऐसी विधि से उन्होंने मुझे संयम सिखाया जीवन में, जो इस मार्ग पर मैं इतना आगे बढ़ पाया। अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर पाना एक योगी के लक्षण है। योगी अर्थात जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में किया है, ऐसा जितेंद्रिय जो है वह योगी। तो आज की मुरली में बाबा क्या देखना चाहते हैं हमें, अभी दूसरी मुरली को रिवाइज करेंगे 14 तारीख की, क्या बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कर्मेंद्रिय जीत। बाबा ने कहा यह पहली पौड़ी है, फर्स्ट स्टेप। इसी मुरली में याद प्यार में बाबा ने और एक शब्द प्रयोग किया है, संस्कार जीत। बहुत कम इस शब्दों का प्रयोग किया है बाबा ने अन्यत्र। क्या बनना है तुम्हें, सूक्ष्म संस्कार जीत, कर्मेंद्रिय जीत, संस्कार जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, और उसके बाद तुम जाकर बनोगे विश्व राज्य के अधिकारी। जो यहां कर्मेंद्रिय जीत नहीं है वो विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। राज्य दरबार लगाओ, मंत्री उपमंत्री धोखा तो नहीं देते। वो प्रजा पिता ब्रह्मा है और हम कौन है? प्रजा पति। ये कर्मेंद्रिय हमारी प्रजा है, हम राजा है। तो हमारा अधिकार इन कर्मेंद्रियों पर हो। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, आंख नाक ये मुंह या जिह्वा कान और स्पर्श। अभी अभी एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने पिछले संडे के पिछले संडे, एक है अधिकारी एक है सर्व अधिकारी, जगत माता वाली मुरली, दो प्रकार देखे, एक है अधिकारी एक है सर्व अधिकारी। तो ऐसे सर्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रिय चीत, कर्मातीत की परिभाषा बाबा ने कही थी उसमें, कर्मातीत अर्थात जो कर्म है उससे अतीत, उनके बंधनों से अतीत, एक तो ये परिभाषा कही थी और दूसरी परिभाषा थी सर्व इंद्रिया जिनके वश में है वो कर्मातीत है। तो कर्मेंद्रिय चीत बनना है बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। सारी कर्मेंद्रिया हमारे वश में आ जाए, जैसे उस बोधि भिक्षु ने लिखा कि शुरुआत में कितना कठोर लगा उसे, परंतु यही जो पहले विष की तरह था बाद में वही अमृत बन जाता है। और जिनकी कर्मेंद्रिया वश में नहीं होती है, वो एक भी कर्मेंद्रिया यदि वश में नहीं, जैसे गीता में लिखा है, वो एक ही कर्मेंद्रिया खींचकर उसे ले जाती है, जैसे समुद्र में कोई नैया हो और उसको समुद्र खींचकर कहीं और ले चला जाता है तूफान, वही गति मनुष्य की भी होती है। यहां बाबा ने कुछ संस्कार गिनाए हैं, एक तो संस्कार है विश्वराजन के, महाराजन के, बेहद के संस्कार, दूसरे संस्कार है हद के, स्टेट के राज्य अधिकारी के, तीसरे संस्कार है किसके, साहूकार प्रजा के, और चौथे संस्कार है दास और दासी के। नीचे से चालू करते हैं, उदास रहना, परिस्थिति के अधीन होकर रहना, समस्या के अधीन होकर रहना, संस्कारों के अधीन होकर रहना, और उससे अगर उदासी आती है, उदासी की लहर आती है, तो क्या बनेंगे? दास। खुशी के महल, जो भी आए देखे तो क्या कहे, ये खुशी के महल है, झोलियां प्यार से भर गई, खुश रहो और खुशी बांटो। खुश रहना है क्योंकि तुम्हें भगवान मिला है, खुशी तुम्हारी अपनी चीज है। तो इस संगम युग में यदि उदासी है जीवन में, डिप्रेशन की स्थिति है, अवसाद ग्रस्त मन चित्त है, तो पद अभी निश्चित है। लहर, बाबा ने कहा लहर, एक लहर भी ना आए उदासी की, अगर है तो खुद का डायग्नोसिस पहले खुद करो कि ये उदासी क्यों है, कॉजेस क्या है, इटियोलॉजी क्या है इस डिप्रेशन की, क्या कोई व्यक्ति है, क्या कोई परिस्थिति है, क्या कोई अभाव है, क्या कोई आसक्ति है, क्या कोई चाह है जो पूरी नहीं हो रही है, इच्छा की अपूर्ति है, क्या कोई शारीरिक कर्म भोग है। सबसे पहले तो कारण ढूंढना है, डिप्रेशन है क्यों, क्यों उदास हूं मैं, क्यों अब भी आंसू आ जाते हैं। एक अव्यक्त वाणी है इन्वर्टेड कॉमा, बाबा ने कहा है योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। क्या कहा है बाबा ने? पर कौन ऐसी माता है जिनकी टंकी ऐसी भरी है कि जो कितनी भी धूप आ जाए पर सूखती नहीं है? है ऐसी कोई माता है? नहीं। बाबा ने कहा है रोना नहीं है, रोना बंद, चाहे आंखों से रोना या मन से रोना, आंखों से भी नहीं तो मन से भी नहीं। दुखस्य कौन कारणम, भागवत की शुरुआत वहां से होती है, क्या कारण है दुख का, स्वयं को इन्वेस्टिगेट करना है। क्यों मैं दुखी हूं, क्यों मैं उदास हूं, क्या कारण है ऐसी उदासीन गमगीन स्थिति का, कहां है इस दुख की गंगोत्री, कहां से यह अविरल प्रवाह बह रहा है। क्या कमी है? ज्ञान की कमी है, योग की कमी है, समझ की कमी है, चिंतन की कमी है, तपस्या की कमी है, वैराग की कमी है, खुशी की कमी है, है क्या? क्यों ये दुख आ रहा है? अपने दुख पर रिसर्च करना है, देखना है उसे आमने सामने, ये है कारण, और नष्ट कर देना, ढूंढना और समाप्त करना। ढूंढ कर यदि मिल जाए तो समझ लो आधा काम हो गया, केवल ढूंढ लो कहां है तो उसका वास्तविक स्वरूप पता चलेगा। जितना वो डरावना है उतना वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है। एक महिला थी, उसे रात में रोज एक स्वप्न आता है, रोज एक स्वप्न देखती थी, घना जंगल, घटाटोप, अंधकार, जिसमें वो भाग रही है और पीछे एक काली छाया राक्षस के जैसी उसका पीछा कर रही है। वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, पसीना पसीना, और वो पीछे से छाया आ रही है, एक भूत, एक राक्षस। इतना रोज देखती है और उठती है और धड़ 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 इसी के साथ रोज उठती है। पूरा स्वप्न होता नहीं है, बस इतना ही दिखता है कि एक जंगल, घना जंगल जिसमें वो भाग रही है, एक काली छाया उसे पकड़ने के लिए, और विचित्र विचित्र आवाजें। पीछे मुड़ के वो देखती नहीं है, बस वो भाग रही है और वो भी भाग रहा है वो राक्षस। कितना इलाज कराती है पर कोई डॉक्टर के पास इसका इलाज तो है नहीं। और एक दिन ऐसा होता है कि स्वप्न फिर से वही देखती है, परंतु सोचती है इस बार मैं देख ही लूं वो कौन है। तो वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, पीछे वो छाया भी उसके भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, और सामने कुछ भी नहीं रहता है। खाई तो गिर जाती है नीचे, नीचे गिरती है, सामने से वो छाया आती है उसके ऊपर ऐसे राक्षस। वो पूछती है रुको तुम कौन हो? वो कहता है मुझे क्या पता, स्वप्न तुम्हारा है। अज्ञात से भय मन में छिपे है, शायद वहीं से दुख उत्पन्न हो रहा है। अपरिचित से संकल्प और संस्कार है, शायद वहीं से दुख उभर रहा है। ऐसी अभी भी इच्छाएं रखी है मन में जो पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे नाम की है, पद की है, काम प्रसिद्धि की है, अपूर्ण है, शायद ईर्ष्या है, शायद द्वेष है, कुछ तो है जिससे ये राक्षस पीछे पड़ा है, दुख का, अवसाद का, डिप्रेशन का। सारा संसार तो डिप्रेशन में है, दुखों में है। यदि हम भी डिप्रेशन में रहे तो, संसार के लोग तो नींद की दवाइयां खा खा कर सोते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, यदि हमारी भी वही स्थिति हो तो क्या हम आधार और उद्धार मूर्त बन सकेंगे जगत के? महात्मा बुद्ध ने से उनके शिष्य ने एक दिन पूछा कि मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, आनंद पूछता है 40 साल से मैं आपके साथ हूं, देखता हूं कि जब आप सोते हो जहां आपका हाथ रहता है बस वहीं हाथ सुबह भी होता है, जिस मुद्रा में सोते हो रात में उसी मुद्रा में उठते हो, क्या रात में भी आप जागे रहते हो? सुबह जैसे रात में जैसे सोते हो, इस तरफ तो इस तरफ, उस करवट तो उस करवट, क्या आप सोते हो या नहीं सोते हो? वो कहते हैं मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे अपनी करवट बदलने की आवश्यकता नहीं। करवटें तो व्यक्ति तब बदलता है जब अशांत हो। यहां मन इतना शांत हो गया है कि अब उस वो जो बेचैनी का भाव उसमें नहीं रहा। तो अपने दुख को देखना, उदासी को देखना, उदासी की लहर ना आए, भगवान के बच्चे और उदास, अव्यक्त महावाक्य हो नहीं सकता। भगवान के बच्चे और उदास हो नहीं सकता, स्वयं भगवान कह रहा है। कोई ना कोई इच्छा है जरूर जो उदास कर रही है, चाहे धन की कामना हो या और कोई कामना हो। माता है बाबा से कहती है बाबा थोड़े धन चाहिए, पैसे दे दो। तो बाबा का क्या उत्तर है? बाबा कहते हैं मैं हीरे देने आया हूं, तुम कागज मांगती हो? तो सेवा करनी है इसके लिए धन दे दो। इन्वेस्टिगेट करना है, छानबीन करनी है दुखों की और उससे मुक्त होना है इस उदासी से। उदासी शोभा नहीं देती भगवान के बच्चों को। हम में तो जो उदास है उनमें उमंग उत्साह भरना है। फिर बाबा ने साहूकार प्रजा वाली आत्माओं के बहुत सारे लक्षण गिनाए। विधि को जानते हैं, विधान को जानते हैं, विधि को नहीं जानते। स्टॉक है यूज नहीं कर सकते, नॉलेज है पावरफुल नहीं है। ज्ञान का खजाना है, पुण्य का खाता जमा कर रखा है, परंतु सफलता मूर्त नहीं है। ज्ञान सारा समझ में आ गया है, अप्लाई कैसे करना वो नहीं पता। अब खजाने हैं परंतु यूज कैसे करना, सारे नियम मर्यादाओं का पता है, पर फिर भी ऐसी अगर हमारी स्थिति है तो हम क्या बनेंगे? प्रजा। बाबा कहते मैं जानी जाननार नहीं हूं, अभी अपना जो पुरुषार्थ है वो देख लो और समझ लो क्या बनोगे। ये वहां के बनने की भी बात नहीं है, उधर का भी छोड़ दो सतयुग का। यहां एक सतत संघर्ष रहेगा मन में, पता सब कुछ है ये करना चाहिए, अमृत वेले उठना चाहिए, अमृत वेले रेगुलर होना चाहिए, उसमें नींद नहीं आनी चाहिए, नींद का अंश भी ना हो अमृत वेले, फिर भी नींद। तीन कैटेगरी से नींद करने वालों की, एक तो अमृत वेला, दूसरा मुरली और तीसरा इस तरह वाली क्लास जिसमें डिस्कशन या चर्चा परिचर्चा हो रही है। पता है नहीं होना चाहिए फिर भी होता है, तो ये सब साहूकार की कैटेगरी है। प्रथम कैटेगरी है विश्वराजन की, सर्व कर्मेंद्रीय अधिकारी, स्टेट वाले नहीं, स्टेट के अधिकारी नहीं, वो तो सेकंड है हद के। हद वाले अर्थात कभी कभी, जो मुरली में चर्चा तो नहीं की है बाबा ने पर अन्यत्र कहीं कहा है, एक है सर्व अधिकारी, एक है अधिकारी। कभी अधिकारी कभी अधिकारी नहीं, कभी कर्मेंद्रिय जीत कभी कर्मेंद्रिय जीत नहीं, कभी कभी आंखें धोखा दे देती है, कभी कान धोखा दे देता है, कभी जिह्वा धोखा दे देती है। तो हमें क्या करनी है? कचेरी करनी है, क्या करना है, कचहरी करनी है, रात में राज दरबार लगाना है, अपने मन से बात करनी है, किसी और के मन से बात करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं से बातें करनी है। तुलसीदास लिखता है कि मैंने ये जो रामचरितमानस लिखा है संसार की आत्माओं के लिए नहीं, अपने मन के लिए। अरे मूर्ख मन, कहां भाग रहा है राम के चरणों को छोड़कर। सेल्फ टॉक, अपने ही मन से बात करना, अपने ही चेकिंग करना, मन क्या क्या इच्छाएं हैं उसमें, क्या चाहता है वो, मन को समझना है, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी उसको देखना है। जैसे मन छोटा भाई और बुद्धि बड़ा भाई कहो बहन कहो, उनका आपस में क्या वार्तालाप होता है, सेल्फ टॉक क्या चलती रहती है, अंदर ही अंदर क्या संवाद चालू रहता है देखना। तो कर्मेंद्रिय जीत बनना है, कर्मेंद्रिय अधिकारी बनना है, स्वयं की चेकिंग करनी है, सारी कर्मेंद्रिया आंखों के इशारों से, इशारे से समझे, जी हजूर जी हाजिर करे, एक भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे। तो ऐसी पांच कर्मेंद्रिया है, आंखें कहां कहां आंखें धोखा देती है, क्या देखने को लालायित है, क्या उसे यह देह देखना है। जगदीश भाई कहते थे इस देह में गोबर ही गोबर भरा है बस, और कुछ नहीं है इसमें। अस्थि पंजर से बना यह देह, इसे देखना है, क्या देखना चाहती है, इस संसार को देखना है। कहीं पर भी हमारी आंख ना डूबे इस संसार के वैभव में, इस संसार की सामग्री में, साधनों में, खान पान की वस्तुओं में, कहीं पर भी नहीं। ऐसा कंट्रोल आईज, आंखों का, कान क्या सुनना चाहते हैं, क्या संसार के समाचार सुनना चाहता है, कौन क्या कर रहा है, तुम्हें उससे क्या। झगमुई झरमुई बाबा कहते हैं, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, फिल्मों में क्या हो रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है और किसका किसके साथ क्या हो रहा है, तुम्हें करना क्या है, किसने किसके विरुद्ध में आंदोलन किया है, राजनीति में क्या क्या अंदर हो रहा है, क्या ये समय है वो सब करने का। परंतु मनुष्य का भी अद्भुत स्वभाव है। एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा लिखा है कि दो व्यक्ति यदि सड़क पर झगड़ा हो जाए तो सारे लोग एकत्र हो जाते हैं देखने के लिए, अगर दोनों में तुरंत ठीक हो जाए तो उदास हो जाती है पब्लिक, जैसे कुछ हो, कुछ तो हो जाए, साइकिल से कोई जा रहा है साइकिल रोक के देखेगा क्या है, और दोनों की अगर मैत्री हो जाए तो फिर डिबेट हो रहा है तो मजा आता है देखने के, कौन जीतता है कौन जीतता है, भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान। अगर दोस्ती हो जाए तो बहुत उदास भी हो जाएंगे, चाहते तो है दोस्ती हो जाए पर शायद उदास होने वाले भी हो जाए बहुत सारे। तो ये सुनना, क्या हम सुन रहे हैं, जिह्वा क्या हम खा रहे हैं, ये खाऊं वो खाऊं, खाऊ खाऊ म्याऊ म्याऊ बाबा कहते हैं ना मुरली में, अगर जिह्वा को जीत लिया तो बाकी सारी कर्मेंद्रिया अपने आप ठंडी हो जाएगी, उत्तेजना भरी है इसमें, और जब तक इस जीव को नहीं जीतते तब तक कर्मेंद्रिय जीत कैसे कोई बन सकता है। ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, इसमें वो कम है उसमें वो कम है, इसमें ऐसा है उसमें वैसा है, क्या कहेंगे। तो जिह्वा फिर है स्पर्श, सुगंध, स्मेल। दादी गुलजार एक बार क्लास करा रहे थे ओम शांति भवन में, और अचानक वहां से कुछ गंदगी या कुछ ढेर था कचरे का, जिसका बास आ रहा था। सब लोग कान ऐसे करके ऐसे ऐसे मुंह बना रहे थे। दादी ने कहा था, ये कर्मेंद्र जीत की अवस्था है क्या? क्या इस दुर्गंध को भी नहीं सहन कर सकते? स्मेल, टच, टच से जो भी सुख उत्पन्न होता है अंततोगत्व दुख में परिणित होता है। जो जो स्पर्श से जो भी सुख उत्पन्न होगा वो क्षणिक है और दुख की ओर घसीट कर ले जाता है। इंद्रियों के जो सुख है, सारा संसार काम विकार में फंसा हुआ है, सोचता है उसमें बहुत सुख है, परंतु सुख उसमें कहां, भ्रांति है। मृग मरीचय चिका की तरह है वो सुख, है सुख भास रहा है परंतु अंदर दुख है। केवल वो स्क्रीन सेवर है, ऑन करो तो अंदर दुख। कर्मेंद्रियों के सारे ही विषय जनित सुख विषय वस्तुओं की ओर उन्मुख है, उनको वहां से हटाकर आत्मस्थ कर देना, शासन मन का उन पर हो, तो लास्ट में समय हो रहा है। केवल चीजें गिनाऊंगा, नंबर्स, कि कैसे कर्मेंद्रिया जीत बने। मुरली में तो विस्तार और भी चीजों का है, परंतु केवल एक टॉपिक ले रहे हैं, कर्मेंद्रिय जीत कैसे बने। एस, ऐसे 7 to 8 एस है, इंग्लिश का लेटर है एस। सबसे पहले संयम, हमारे जीवन में संयम हो। हमें लिस्ट बनानी है कहां कहां स्वयं को संयमित करें, कितना देर नेट पर बैठना है, कितना देर मीडिया में भटकना है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, कितना देर ईमेल चेक करते बैठना है, कि सारे दिन भर ही करना है 5-5 मिनट में। जो आईटी वाले हैं, कंप्यूटर जानने वाले, कितना समय उसमें जा रहा है, कितना समय उसको चेक करना है, सोशल मीडिया को कितना उसमें एक्टिव रहना है। संयम, इन उंगलियों पर संयम चाहिए थोड़ा। एक क्लिक इधर से उधर इस जहान से उड़ा देगी। विदेश की एक छोटी सी बात है, जयंती बहन ने जो हमें क्लास में सुनाई थी, कि विदेश का एक अनन्य भाई जिसने अच्छी अच्छी सेवाएं की थी, सेंटर पर नियमित रेगुलर आता था, और अचानक देखा गया कि उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो रहा है सेवाओं में, थोड़ा उदास रहने लगा। क्या हुआ पूछा तो कुछ बताता नहीं था। सो कहता था, बाबा डजंट वॉन्ट दैट आई शुड वर्क एनी मोर, बाबा नहीं चाहता है, बाबा के ऊपर डालता था ऐसे, कि बाबा नहीं चाहता था कि अभी मैं और भी कुछ करूं। फिर लगा ये तो थोड़ा बढ़ रहा है, तो एक छोटी बहन को उसके साथ बिठाया, और फिर उसने एक दिन कह दिया कि मुझे, जब सेवाएं सारे दिन भर करता था, रात में थकता था, तो इंटरनेट पर बैठता था और बहुत सारे वीडियोस देखता था, और देखते देखते कहां से कहां बुद्धि चली गई अश्लीलता की ओर, और वो करते करते कभी 11 कभी 12 और फिर धीरे धीरे सेवाओं में इंटरेस्ट खत्म हो गया। वहां से माया आई, सारे दिन भर सेवा, रात में माया। सेवा तो करेंगे क्योंकि इतने समय से कर रहे हैं, अनन्य तो बने ही रहेंगे, पर आंतरिक स्थिति गिरावट। क्या हम देख रहे हैं? तो सबसे पहला संयम, दूसरा साइलेंस, स्थूल साइलेंस। जब तक साइलेंस नहीं आता जीवन में, कम से कम 8 बजे तक तो साइलेंट रहे, शाम को जैसे ही समय मिलता है मौन। भक्ति में तो हमने कितने मौन रखे थे, सोमवार का मौन कई लोग रखते थे, ये मुख उसे बहुत आदत है, मौन। तीसरा सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड अर्थात एकांत, स्थूल एकांत, अपने आप में चले जाए थोड़े समय के लिए, संसार से, लोगों से, परिवार से अलग, मैं और मेरा मन और बाबा, क्या है दोनों के बीच सॉलिट्यूड। चौथा सेवा, सेवा में स्वयं को बिजी रखना है, जितना हो सके बिजी रखना है, धीरे धीरे कर्मेंद्रिय चित्त बनेंगे, क्योंकि अगर हम बिजी नहीं रहते तो मन भटकता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, किसके जीवन में क्या हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कौन से सेंटर में क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट टू यू। जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाया है, जब वो तीन दिन के बाद पुनः वापस आता है तो उसका एक शिष्य होता है जॉन, पीटर। पीटर जीसस से पूछता है क्या तुम्हारा मुझसे प्यार है, वो कहता है। फिर पूछता है क्या तुम्हारा मुझसे प्यार है, है। क्या तुम्हारा मुझसे प्यार है, तीन बार। फिर पूछता है क्या तुम्हारा, वो जो पीछे आ रहा है जॉन, उससे भी प्यार है, तो वो कहता है व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम करो, मेरा उससे कितना प्यार है वो जानता है और मैं जानता हूं, व्हाट इज दैट टू यू, तुम अपने काम से काम रखो। तो ये एक सेवा। अगला सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग, अवचेतन मन किस तरह से काम करता है उसे हमें समझना है। यह अवचेतन मन में आदतें कैसी बनती है, कल जो आदतों की बात कर रहे थे हम बार बार रिपीटिशन से, हाउ किस तरह से इंप्रेशन होते हैं उसके बारे में पता करना। अगला है स्वमान, स्वमान का अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा जितना स्वमान, जैसे आज के मुरली में मैं कर्मेंद्रिय चितात्मा, मैं राज्य अधिकारी आत्मा, मैं स्वराज्य अधिकारी, मैं इस देह की मालिक हूं, मैं संस्कार जीत आत्मा हूं, मैं विकारों जीत आत्मा हूं, ये सारे स्वमान है। इन स्वमानों में पॉजिटिव ऊर्जा है, हायर कॉन्शियसनेस है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है केवल। पॉजिटिव थिंकिंग तो संसार के लोग करते हैं, दिस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग, ये हायर कॉन्शियसनेस है, चेतना की उच्चतम शिखर का उच्चतम शिखर है, उसमें जैसे हम स्थित होते वो सारा हम में आने लगता है। तो स्वमान, इस तरह से हमें स्वयं की कर्मेंद्रियों को जीतना है। अच्छा, ओम शांति।
शांति। क्लियर हो गई मुरली, बहुत कुछ